भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय छठा स्कंध अध्याय एक श्लोक छ अधुनेह महाभाग जथैव नरकान्नरः नानोग्रजात नान्येयात् स्कन्धे व्याख्यातुमर्हति अधुनेह महाभाग जथैव नरकान्नरः नानोग्रजातनान्येयान् स्कन्धे व्याख्यातुमर्हति. भागवत अधुना अब इह इस स्थान पर महाभाग हे महाभाग्यवान गुरुदेव जथा जैसा एवं निश्चित नरकान नरकों में नरह मनुष्य नाना उग्र जातनान अनेक उग्र यातनाओं से खड़े हुए ना ना याद जा सके तात वह उपाय ने मुझे व्याख्या तुम व्याख्या करके समझाइए और हसी आप इसके योग्य हैं. हिंदी बोलो. हे गुरुदेव आप महाभाग्यवान अब आप वह उपाय बताइए इस उपाय का अवलंबन करने पर मनुष्य उन नरकों में नहीं जा सकता जो अनेक भयंकर दुखों से भरे हुए हैं. आप सब वैष्णव और वैष्णवी सबके चरण कमल में मेरा नमस्कार है. बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि आप लोगों के बीच बैठ कर भगवान कृष्ण की चर्चा की जाए. तो श्री राधा राज बिहारी जी ने वह समय दिया. वास्तव में भक्तों के बीच में बैठ कर जब भगवान की चर्चा होती है तभी रस उत्पन्न होता है, आनंद की अनुभूति होती है. वैसे तो भगवान ने कृपा करके मुझे अपनी कथा में इंगेज रखा है. जहाँ भी जाता हूँ तो सब जगह उनकी कथा कहनी पड़ती है, वो लगा लेते हैं. सब भक्तों के हृदय में प्रेरणा करके और भगवान कृष्ण अपनी कथा कहवाते रहते हैं. तो अभी मैं यह प्रसंग कह करके आया हूँ अफ्रीका से. गुडा के प्रभु जी साथ में थे तो उन्होंने आज कहा कि वही सुनाइए यहाँ के भक्तों को. तो उनके प्रेमाग्रह से मैं इस प्रसंग को प्रारंभ कर रहा हूँ. और विशेष करके मैं श्री वासुदेव चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ जो इस कथा के लिए हमेशा सोचा करते हैं कि कब हो कब हो. इनका मैं बहुत आभारी हूँ कि अवसर मिला। उनके भावों के अंतर भगवान ने व्यवस्था किया। प्रसंग इस प्रकार का है कि श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के 26वें अध्याय में महाराज परीक्षित ने नरकों के विषय में प्रश्न किया है। वो कहते हैं कि भगवान नरका नाम देश विशेषा आहोस्थित अंतराले बहिस्त्रलोक्याम वा। हे सुखदेव गोस्वामी, हे गुरुदेव, यह बताइए ये नरक कोई देश है क्या इस पृथ्वी पर? जैसे भारत है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, रशिया है, वैसे इसी पृथ्वी पर कोई नरक देश है क्या? अथवा इस पृथ्वी से दूसरी जगह पर इस ब्रह्मांड के भीतर ही कोई दूसरा स्थान है, अथवा ब्रह्मांड से बाहर है, कहाँ है नरक? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंतराले एवं, इस ब्रह्मांड के भीतर ही नरक है, पृथ्वी से दक्षिण दिशा में, पृथ्वी से नीचे है, दक्षिण दिशा में है, गर्भ समुद्र के ऊपर है, जहाँ पितृलोक लोक है उसी के पास नरक है। पितृलोक में ऑफिस है नरक का। नरक बहुत बड़ा विभाग है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, इसमें भागवत में लिखा है। और वहाँ अनेक प्रकार के दुखों की स्पेशल व्यवस्था की गई है, पापियों को रेक्टिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। बहुत से भयानक नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी ने। तो उसको सुन करके महाराज परीक्षित का हृदय चिंतित हो गया उन लोगों के लिए जो पाप करते रहते हैं। अतः शास्त्र के इतने बड़े मर्मज्ञ सुखदेव गोस्वामी से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिस उपाय का आश्रय लेकर पापी व्यक्ति भी नरक में न जा सके, क्योंकि जान में या अनजान में पाप होते ही रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो पाप न किया हो या न कर रहा। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पाप किया है अब नहीं कर रहे हैं, कभी कभी अनजान में पाप होते रहते हैं। अनजान में जैसे गृह में भी शब्द है मेधतिर हिंसा, संस्कृत में कहा गया है कि मेधति शब्द का अर्थ होता है हिंसा, और गृह में भी का अर्थ होता है गृहस्थ, जिससे पांच जगह पर हिंसा होती रहती है, पानी भरने में, भोजन बनाने में, झाड़ू देने में, मसाला पीसने में, इन सब कार्यों में निश्चित हिंसा होती रहती है। तो ऐसे गृहस्थ को गृह में भी कहते हैं। सभी गृह में भी है वास्तव में, कोई कितना भी सतर्क रहे लेकिन पाप हो ही जाते हैं। ये तो न चाहते हुए भी पाप होते हैं। आज के मनुष्यों के द्वारा तो जान बुझ करके रख रख के पाप हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं कि ये पाप है, और ये भी मालूम है कि इसके चलते हमारी दुर्गति होगी, फिर भी स्वभाव बस प्रकृति के दबाव में आकर तो मनुष्य पाप कर बैठता है। तो कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जो पाप करने वाले को भी बचा दे। एक सहज वैष्णव हृदय होने के कारण महाराज परीक्षित के मन में दूसरे जीवों के प्रति बहुत बड़ा विचार है। ऐसे इनके विषय में सुखदेव गोस्वामी तो कह चुके हैं कि आप वैकुंठ जाएंगे केवल कथा सुनिए, आप एकाग्रचित होकर के कृष्ण कथा सुनिए, आप तो भगवान के धाम में जाएंगे, इसलिए इन्हें अपनी चिंता नहीं है, दूसरों के लिए चिंता है। यही है वैष्णव का स्वभाव, पर दुख दुख दूसरे के दुख से दुखी रहते। हमारे परीक्षित का यह प्रश्न लोक हित के लिए है, हम सबके हित के लिए है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे परीक्षित एक महान वैष्णव कुल में जन्म लिए हैं, अर्जुन के पौत्र हैं, महाराज युधिष्ठिर के पौत्र हैं और युधिष्ठिर महाराज के राज्य के उत्तराधिकारी हैं। इनके द्वारा एक ऐसी भूल हो गई, एक मुनि के गले में सर्प डालने की, इसके कारण ये राज्य छोड़कर गंगा जी के तट पर बैठे हैं और जहाँ बैठे हैं उनकी सभा में ब्रह्मांड से प्रायः समस्त ऋषि आए। सुखदेव गोस्वामी की कथा बहुत ऊंचे लोगों के बीच हो रही है। जब महाराज परीक्षित से प्रश्न पूछते हैं तो सभी ऋषि ध्यान से सुनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसमें भगवान वेदव्यास देव बैठे हैं। कथा जो श्रीमद् भागवत की रचना किए, जो सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं, वे वेदव्यास देव वहाँ सुखदेव गोस्वामी से नीचे आसन पर बैठ करके और कथा सुन रहे हैं। भगवान परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ आए हुए, प्राय जितने ऋषि आए हैं सब अपने शिष्यों के साथ आए, ऐसा लिखा गया। वेदव्यास देव जी गुरु महाराज नारद मुनि भी उस कथा में बैठे हैं और भगवान वेदव्यास देव और नारद जी एक जगह पर बैठे हैं, ऐसा उल्लेख। इस वक्त पर्वत मुनि, अत्रि जी, वशिष्ठ, कश्यप और बड़ी बड़ी ऋषि मुनि प्राय जो स्वर्ग में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं, वे लोग इस भागवत की महिमा जानते हैं, सुनने के लिए सारा काम धंधा छोड़ करके आ गए। तो ऐसे महान पुरुषों के बीच में मनुष्य को नरक से बचाने के लिए प्रश्न किया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मरने के बाद मनुष्य को जाना पड़ता है अपने कर्म के अनुसार, जैसा भगवान ने गीता में कहा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणकृत प्रतिष्ठा, अधो गच्छन्ति काम। एक ही श्लोक में तीन बार गच्छन्ति 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 शब्द का प्रयोग। गच्छन्ति का अर्थ जाते हैं, बहुवचन में है। गच्छति का अर्थ जाता है, गच्छत का अर्थ दो जाते हैं। संस्कृत के व्याकरण को थोड़ा भी जिन लोगों ने पढ़ा है वो समझ सकते हैं। गच्छन्ति जाते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो सत्त्वस्थ हैं, सत्त्व में अवस्थित हैं, तत्व गुण में है, ज्ञान और सुख में है, पाप नहीं करते हैं, ये लोग ऊर्ध्वम गच्छन्ति। ऊर्ध्वम का अर्थ ऊपर देवलोक में जाते हैं अथवा मेरे धाम में जाते हैं। ऊर्ध्वम अधर मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और रजोगुणी लोग जो केवल खाने कमाने में लगे हुए हैं, यह काम करो यह करो, इतना धन संचय करो, ऐसे भोगो, ये करो वो करो, तो वे लोग मध्य तिष्ठन्ति, इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और कोई आवश्यक नहीं कि मनुष्य शरीर में जन्म लेंगे। और अधो गच्छन्ति तामसा, तामसा अधः गच्छन्ति, तमोगुण में रह करके जीवन बिताने वाले लोग, जुआ खेलने वाले, सिनेमा देखने वाले, हिंसा करने वाले, कामी, लोभी, ये सब अधः गच्छन्ति, नीचे जाते। नीचे का मतलब वृक्ष ज्वनि, कीट पतंग आदि की ज्वनि में जन्म लेते हैं। ये कौन बोल रहा है, जो वास्तव में सबको खींचता है, कौन किधर जाएगा, इसके विषय में श्री कृष्ण सबसे बड़े अथॉरिटी, सबसे बड़े प्रमाण, जो ईश्वर सबको भिन्न भिन्न गति देता है, वही गीता में बोल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसा और ये व्यक्ति अंदाज से बोल रहा है कौन कहाँ जाएगा। भगवान बोल रहे हैं कि सत्वगुणी ऊपर जाते हैं, रजोगुणी मध्य में रहते हैं और तमोगुणी अधः गच्छन्ति। तो जाना है, ये तो सबको पूरा पूरा रियलाइजेशन होना चाहिए कि जाना है। तो जाना ही है तो क्यों नहीं अच्छे जगह पर जाए। जैसे मान लीजिए आप लोगों में से सबको अगर कहा जाए कि ये घर छोड़ना है और आप पर है, आप जैसा घर चुनिए, तो प्रत्येक आदमी अपने स्टैंडर्ड से अच्छा घर चुनेगा। जब छोड़ना ही है, जाना ही है, तो क्यों नहीं अच्छे लोकेशन में जाए, अच्छी जगह पर जाए। तो शरीर छोड़ करके जाना है तो क्यों नहीं हम कृष्ण के धाम में जाएं? नहीं जाना होता तो कोई बात नहीं और करके रह जाते हैं लेकिन जाना है। स्वयं भगवान ही बता रहे हैं कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, ऐसा ऐसे जाएगा। महाराज परीक्षित का प्रश्न ध्यान में रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देने से पहले सुखदेव गोस्वामी यह कहते हैं कि मैंने जिन नरकों का वर्णन किया है उन नरकों में पापी व्यक्ति निश्चित जाता है यदि उसने प्रायश्चित नहीं किया है तो। एक बार जिन नरकों का वर्णन किए और नरक के योग्य कैंडिडेट का वर्णन किए, पुनः दोबारा कह रहे हैं कि मैंने जिन नरकों का वर्णन किया है उनमें पापियों को जाना पड़ता है यदि उन्होंने जीवन में प्रायश्चित नहीं किया, उस पाप को खत्म नहीं कर लिया इसी जन्म में तो जाना है निश्चित। तो उसको ये कह रहे हैं श्री शुका हुआ है। न चेतिहैवापचुतिजनाङ्गतकृतास्य ध्रुवं सवै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्म जातनः। हे महाराज, न चेतिहैवापचुतिजनाङ्गतकृतास्य कुर्यान् मनोक्तिपाणिभिः। मनोक्ति पाणी जी मन वचन और शरीर से हाथ से जिसने पाप किया है और यदि चेतकार से यदि यह एवं किसी जन्म में अपचिति न कुरिया अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लिया तो ध्रुवम सवै प्रेत नरकानुपाय थी सह ध्रुवम प्रेत्य वह मर करके ध्रुवम नरकानुपाय थी वह निश्चित नरक में जाता है। ध्रुवम शब्द है और वही शब्द है, वही का अर्थ होता है बिल्कुल निश्चित है और ध्रुवम का अर्थ भी निश्चित। ध्रुवम शब्द कारण इतना सही हो जाता है लेकिन शायद इस पर कोई सोच सकता है नहीं कोई कोई बच भी जाएगा बिना प्रायश्चित किए कोई बच भी सकता है तो ऊपर से वही लगा रहे हैं। नहीं, ध्रुवम सवै प्रेत नरकानुपाय थी सह प्रेत्य मर कर ध्रुवम निश्चित वही ही नरकान उपाय नरक में जाता है। किन नरकों में? ये कीर्तिता में जिनका मैंने कीर्तन किया जिनका मैंने वर्णन किया सिद्ध में जातना जिन नरकों में भयावह दुख दिया जाता है पापियों। मैं यहाँ पर उन नरकों का वर्णन नहीं किया, अफ्रीका में किया था वहां से चालू किया था लेकिन आप लोग सुन रहे हैं कई वर्षों से भक्त हैं इसलिए अब नरकों का क्या वर्णन किया जाए। मैं सोचा कि वो ठीक नहीं। सुखदेव गोस्वामी स्वयं थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं कि ये मैं कीर्तिता किसके प्रति भवतः मैं आपके प्रति वर्णन किया तिग्म यातना जिन नरकों में भयानक दुख है। तिग्म का अर्थ होता है भयानक। बहुत 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है और प्रत्येक नरक में अलग अलग दुख है। एक पुयोज नाम का दुख नरक है, पुयोज जिसमें केवल पीव भरा हुआ है, मल मूत्र हड्डी राख केस नाक अस्थि ये सब भरा और उसमें उन लोगों को डाला जाता है जो लोग भोजन के नियम का पालन नहीं करते, बिना भगवान को भोग लगाए खा लेते हैं और जहां तहां होटल शोटल में खाते चलते उनको इस नरक में पटका जाता। ऐसे ऐसे बहुत से नरकों का वर्णन है। कितना गंभीरता पूर्वक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। प्रश्न का उत्तर देने के पहले अपने पूर्व वक्तव्य को रिकन्फर्म कर रहे हैं। ऐसा होना है, यह एवं शब्द पर यह इसी जन्म में, ऐसा नहीं कि मरने के बाद कोई चांस दिया जाएगा कि अब पाप का प्रायश्चित कर लो, चाहो गंगा जी नहा लो, हरे कृष्ण जप लो, ऐसा चांस नहीं दिया जाएगा। यही पर जो भी चांस है अभी भी, जो कुछ हो गया है पाप, उन पापों को काटने के लिए अभी पर्याप्त समय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह का अर्थ अस्मिन जन्मनि और केवल का अर्थ ही इसी जन्म में, यदि कृतस्य अंगसा किए हुए पाप का अपचिति न कुर्जात प्रायश्चित नहीं किया तो निश्चित नरक में जाना पड़ेगा। कृतस्य अंगसा किए हुए पाप का कैसे, मन उक्ति पाड़ेगी, मनुष्य मन से पाप करता रहता है, मन से भगवान का चिंतन करना चाहिए लेकिन भगवान का चिंतन न करके संसारी के विचारों में रहता है, संसार के लोगों का चिंतन करता है और दूसरे के अनिष्ट का विषय भोग का चिंतन करता रहता है। और उक्ति वाणी, उक्ति से पाप, आजकल संसार में वाणी से बहुत पाप होता है। कलयुग में तो मन से किए गए पाप की माफी है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। मन से चाहे कितना भी पाप करे कोई, वो लागू नहीं होगा। लेकिन जो लोग भक्त हैं, अगर वे मन से पाप करेंगे तो उसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरे के लिए छूट है, क्योंकि दूसरे लोगों का मन बहुत नीचे है, कितना जमराज के पुष्प उसको लिखेंगे पढ़ेंगे हार जाएंगे, इसलिए मन से किए गए पाप की माफी। लेकिन उक्ति वाणी से किसी को गाली देना, सिनेमा का गीत गाना, ये सब पाप है। वाणी भगवान ने हमको दिया है तो ऐसा नहीं कि हम अनर्गल इस्तेमाल किया करें, जब बोलने की इच्छा करे तब बोला करें, जैसे कि निंदा करने में भगवान शेषनाग हो जाए। कुछ लोग ऐसे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, दूसरे की निंदा करना हो तो एक चीज कहीं 10,000 चीज का काम ले लेते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। पाप है वहां, दूसरे की चुगली करना और विषय का वर्णन करना, आजकल के लोग वाणी से बहुत पाप कर रहे हैं। तो बाड़ी से पाप करते ही हैं, प्रेस से कंप्यूटर से पाप कर रहे हैं, पत्र पत्रिका अखबार छाप छाप करके भेज रहे हैं दुनिया में, स्वयं तो पाप कर रहे हैं, दूसरों को भी पढ़वाते हैं, तुम भी पढ़ो अखबार। सवेरे सवेरे भले भागवत का दर्शन न हो लेकिन रोड पर जहाँ तहाँ अखबार का दर्शन जरूर हो जाता है, मॉर्निंग न्यूज या न्यूज वह न्यूज, पाप है। ये संसार का वर्णन करना, संसार का वर्णन करना, इसके लिए हमारी उक्ति नहीं है। भगवान ने हमें एक सीमित वाणी दिया है, सीमित शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग भगवान कृष्ण के गुणानुवाद में करना चाहिए। और यदि गुण मालूम न हो भगवान का तो महामंत्र तो मालूम है, इसकी आवृत्ति करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्यान देना चाहिए शास्त्रों के शब्द पर कि मनुष्य उक्ति से पाप करता है, वचन से बोलना। उक्ति का अर्थ होता है अपने भावों को प्रकाशित करना, जैसे व्यक्ति शब्द है तो व्यक्ति शब्द बना है वी धान प्लस उक्ति, व्यक्ति विशेषण उक्ति, जो हम विशेष रूप से किसी वस्तु का प्रकाशन करते हैं तो उसको व्यक्ति कहते हैं, और अभिव्यक्ति या व्यक्ति। तो उक्ति का भी अर्थ होता है हमारे भीतर जो भाव है, हमारे मन में जो विचार उठ रहा है उसको कुछ व्यक्त करना, भावों से व्यक्त करते हैं। और पाणी भी, और हाथ से पाप होता है। जितनी आजकल गायें मारी जा रही हैं, पशु वध हो रहा है, सब हाथ से मार रहे, मशीन हाथ से बनाए हैं, इसीलिए मशीन से जो भी गौ का वध हो रहा है, जीवों की हिंसा हो रही है, सब हाथ से किया हुआ माना जाएगा। पानी, तो आंख से कान से सब तरह से पाप करते रहते हैं। पाप तो लगातार होते ही रहते हैं, लेकिन बहुत सजग होकर के इन पापों को इसी जन्म में काट देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। कोई गलती हो गई है कर देना चाहिए, नहीं करने पर निश्चित नरक में जाना पड़ता है। यही जो तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, इसी जन्म में इसी शरीर में उन पापों को काटना है। पहले के जो पाप हैं उनको भी और इस शरीर में जो किए हैं उसको भी, इस मनुष्य जीवन में उसको खत्म करके कर्मबंधन से मुक्त हो जाना चाहिए मनुष्य को, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और यह सिद्धांत करके कहते हैं, पाप निष्कृत जते मृत्योर पिपात्मना दोष से दृष्टवा गुरु लाघव यथा विसुते तरुजा निदान। तस्मात इसलिए प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे तो निश्चित नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए तस्मात पूरा एवं आसु एवं इह एवं पाप निष्कृत जते। अतः पाप निष्कृत, पाप को पूरा पूरा समाप्त कर देने के, पाप फल को पूरा पूरा काटने में पूरा एवं मृत्यु, मृत्यु पूरा एवं मृत्यु से पहले ही आसु एवं जल्दी ही इसी जन्म में, मृत्यु से पहले वो भी बहुत जल्दी, और विपत्तिमना जब तक यह देह विपत्ति में नहीं पड़ जाता है, भीषण रोग या बुढ़ापा से ग्रस्त नहीं हो जा रहा है, उससे पहले पहले जतन कर लेना चाहिए, पहले ही पाप काट लेना चाहिए। कई बार एवं शब्द लगाना पड़ेगा, तस्मा पूरा एवं मृत्यु पूरा एवं मृत्यु से पहले ही। अब शरीर छूट जाएगा और जमराज के दूत आएंगे लेने के लिए, तो उस समय यदि आप उनसे माफी मांगते हैं, सरकार छोड़ दो गलती हो गई, दो चार साल जीने तो हम पाप का प्रायश्चित करेंगे, अब धर्म करेंगे, भजन करेंगे, यह सुनने के बाद जमराज के दूत और ज्यादा पीछते हैं। उन लोगों को ट्रेनिंग होती है इससे, सब ऐसा लिखा गया है। जमराज के जो बड़े बड़े दूत हैं, बहुत एक्सपीरियंस दूत हैं, बहुत अनुभवी, तो वे लोग और दूतों को सिखाते हैं पापियों को कैसे मारा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, कैसे आग में जलाया जाएगा। अगर कोई माफी मांगे तो और ज्यादा मारते हैं, चुपचाप पहले तब तो ठीक है। जमराज के दूतों को ट्रेनिंग दिया गया है, तो मृत्यु पूरा एवं मृत्यु से पहले ही प्रायश्चित करना है, और वो भी यह एवं इसी शरीर में, अच्छा इसी समय जिसमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और आसु एवं जल्दी से जल्दी। और उसके बाद भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अविपत्यता आत्मना, जब तक यह आत्मा, जब तक यह शरीर अविपत्यता विपद में नहीं है, उसके पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए। एक दिन शरीर विपत्ति में पड़ जाता है, पड़ना ही है इसको। कौन ऐसा है जो बुढ़ापा से बच जाएगा? बुढ़ापा इस शरीर के लिए बहुत भारी विपद है, और विपद्यता विपद में नहीं है, उसके पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए। एक दिन शरीर विपत्ति में पड़ जाता है, पड़ना ही है इसको। कौन ऐसा है जो बुढ़ापा से बच जाएगा? बुढ़ापा इस शरीर के लिए बहुत भारी विपद है, बुढ़ापा में चला नहीं जाता है। हमने देखा है कि किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए उसके घर के लोग कहते हैं, वो तो अपने पैर पर चल करके बाथरूम में चले जाते हैं, अभी तो बहुत ठीक है, ऐसा कहो। इसका मतलब बुढ़ापा में ऐसी दशा होगी कि पलंग पर खाट पर पड़े पड़े शौच करना पड़ता है, वहीं थूकना पड़ता है, और आदमी खड़ा रहता है, खड़े खड़े पेशाब करने लगता है, और कोई घर का लड़का होता है सयाना आदमी, उसको पकड़ करके और टॉयलेट में ले जाता है, अपने से चल नहीं सकता। जो अपने से बाथरूम में नहीं जा सकता वो प्रायश्चित क्या करेगा उस समय बताइए, क्या तप करेगा, क्या भजन करेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अविपद्यता आत्मना, जब तक शरीर विपत्ति में नहीं पड़ जाता है उसके पहले ही और जल्दी, नहीं तो कई प्रकार की बाधाएं आ सकती है, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं, दोषस्त दृष्टवा गुरु लाघवम यथा भीषक चिकित्सित रुजन निदानवित। रुजन निदानवित निदानवित रोगों की चिकित्सा जानने वाला भीषक वैद्य डॉक्टर जिस तरह से रोगों की गुरुता और अल्पता के अनुसार दवा देता है, चिकित्सा करता है, उसी तरह से छोटे पाप के लिए छोटा प्रायश्चित और गुरु पाप के लिए गुरु प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गुरु का तो बड़ा, अगर छोटे पाप किए हैं तो छोटा प्रायश्चित कर लो, खत्म करो उसको, और बड़ा पाप हुआ है तो बड़ा प्रायश्चित होना चाहिए। ये जो हम लोगों की दशा है वर्तमान में, एक रुग्ण दशा है, और शास्त्र बताता है कि इस रोग की चिकित्सा कैसे होगी। वैसे हम लोग इस बात को जान चुके हैं, महामंत्र ही सबसे बड़ा औषधि है, इसमें सब सबसे बड़ा प्रायश्चित है, अंत में यही आएगा कंक्लूजन। लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव है कि जब तक किसी बात को सिद्धांत पर, दार्शनिक धरातल पर कष्ट नहीं लेता है तब तक उसके मन में विश्वास होता नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी इसी से पहले प्रायश्चित की बात कर रहे हैं। दोषस्त दृष्ट्वा गुरु लाघवम यथा, गुरु पाप हो या लघु पाप हो, जैसा हो उसके अनुसार चिकित्सा कर लेनी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत से डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, औषधियां हैं, और प्रायः रोगी ठीक होकर के आते हैं, है ना? प्रायः ठीक होकर के आते हैं, स्वस्थ होकर के आते हैं, रोग मुक्त होकर के आते हैं। तो हम लोग जो पाप किए हैं या कर रहे हैं वास्तव में हमारी रुग्ण अवस्था है, और इस पाप से हम मुक्त हो सकते हैं, जैसे रोग से मुक्त हो जाते हैं। डॉक्टर जानता है, वैद्य जानता है कि अमुक दवा देने पर ये रोग चला जाएगा, ये पथ्य करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो उसी तरह से कुछ परहेज है कि अब यह नहीं करेंगे, अब ये कार्य करेंगे तो पहले का जितना भी पाप है सब खत्म हो जाता। तो बड़े बड़े महर्षियों ने, आचार्यों ने पाप के अनुसार प्रायश्चित बताया है, जैसे मनु महाराज, जगवल ऋषि, इन महान पुरुषों ने मनुष्य समाज के हित के लिए बताया कि यदि तुमसे गलती हो जाती, पाप हो गया है, तो इस पाप के लिए यह प्रायश्चित कर लो, इस पाप के लिए यह प्रायश्चित कर लो। शास्त्र कहता है कि मान लीजिए किसी ने चोरी किया है, चोरी किया है तो उसका प्रायश्चित यह है कि वह व्यक्ति दान करे। चोरी किस लिए किया, कि हम अपने परिवार को देंगे या हम भोगेंगे, तो वहां पर लिखा गया चोरी हो गई है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि दान करे और दो दो तीन तीन दिन पर एक बार खाए। जिस पापी शरीर के लिए चोरी किया तो अब उसको उपवास द्वारा सुखाना चाहिए, भोजन नहीं देना शरीर को, और भी जो धन है वो ब्राह्मणों को दान कर देना, ऐसा लिखा है, गरीबों को दे देना, तो उसे उस पाप का प्रायश्चित होता है। आप यदि इस जन्म में नहीं प्रायश्चित किए तो वह पाप चक्रवृद्धि सूद की तरह बढ़ता है, इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है, और आगे हजारों हजारों वर्ष तक नरक में उसको सताया जाता है। यहाँ आसान है, इस जन्म में भी प्रायश्चित किया जाता है, थोड़ा भी प्रायश्चित खत्म कर देता है पाप को, लेकिन बचा रह गया तो बहुत भोगना पड़ता है। आजकल के लोग तो बहुत इंटरेस्ट खा रहे हैं, उनको अनुभव हो गया है मूल तो धन पड़ा ही रहता है, इंटरेस्ट से काम चलता है। बताए जिनको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो उनको कितना महंगा पड़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 10 रुपए का 1 किलो खरीद करके कुछ खा रहा है, अगर उसको साल में इंटरेस्ट 50% देना होगा तो इसका मतलब वो 1.5 किलो खाया। गरीब आदमी 1.5 किलो खाया और धनी आदमी 1 किलो खाया, गरीब का खर्चा तो ऐसे बढ़ गया। एक तरह पापों के विषय में भी यही बात है, अगर देर हो जाती है तो व्रत दुगुना करना पड़ता है इसी जन्म में। अब और दूसरे जन्म में तो प्रायश्चित का कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन अगर यहाँ देर हो गई है तो दुगुना करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं आशु, जितना जल्दी कर। जैसे किसी के शरीर में रोग अभी उत्पन्न हो रहा है तो बहुत अच्छा है कि जब ही रोग उत्पन्न हो तुरंत चिकित्सा कर दी जाए, क्योंकि रोग कमजोर रहता है अभी। लेकिन जिस दिन वो शरीर में जड़ जमा लेगा, रूढ़ पदक कहते हैं, जिस दिन उसके पैर जम जाएंगे इस शरीर में रोग के, तो फिर वो दवाई और डॉक्टर की नहीं सुनेगा, है ना, फिर नहीं सुन सकता। इसलिए जितना जल्दी हो माला उठाना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है तो जितना जल्दी करे। और वैसे वास्तव में भगवान के नाम को पाप काटने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जितना चक्रवर्ती ठाकुर कहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में सिंह है पालतू, आपके घर में सिंह है तो अगर कदाचित आपके घर में सियार आ जाए तो सियार को भगाने के लिए आप सिंह का इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके लिए तो बच्चा काफी है, वो डंडा लेकर के मार दूर करके भगा देगा। सिंह घर में है तो सिंह को बिल्ली भगाने में और सियार भगाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। भगवान का नाम प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए है, तो पाप काटने के लिए नहीं, ये तो केवल नामाभास के पाप कट जाते। इतिहास में जैसे अजामिल के लिए कहा गया है तो पुत्र का नाम बोला, भगवान का नाम नहीं बोला, लेकिन क्योंकि वो आभास हो रहा था वो भगवान का नाम है, असली नाम तो भगवान का है नारायण, ये बच्चे का तो बाद में नाम रखा गया है ना, असली तो नाम नारायण भगवान का है, तो उस नामाभास ने अजामिल को मुक्त कर दिया जमजातना से। तो पाप काटने के लिए नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रथम बार जिस बार नाम लिए होंगे उसी समय सारा पाप कटकर खत्म होंगे, इस प्रसंग में बात बताई जाएगी। लेकिन अविश्रांत जो नाम जपने के लिए कही जाती है बात, वो कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी ये जो प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं बहुत अच्छी है, पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, परंतु इस प्रकार के प्रवचन से परीक्षित महाराज प्रसन्न नहीं हुए। तो प्रश्न करते हैं श्री राजो आज, राजा ने प्रश्न किया, दृष्ट श्रुताभ्याम जत्पापम जानन अप्यात्मन हितम करोति भूय विगतो प्रायश्चित्तमसो कथम। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि दृष्ट श्रुताभ्याम जत्पापम जानन अप्यात्मनो हितम, मनुष्य देखता है उसके पाप के कारण उसको दंड दिया जाता है। राजा किसी को फांसी पर चढ़ा देता है, सरकार फांसी पर चढ़ा देती है, यहाँ कोई मारता है पीटता है, देखता है मनुष्य को गलती के कारण पाप के कारण दंड दिया जा रहा है, और सुनता है नरक लोक में जमराज जी पापियों को सुख देते हैं। दृष्ट श्रोता भयं आत्मनो अहितम, देखता है और सुनता है लेकिन जानिया सुनिया विष खाए, जानता है कि और सुनता है। बहुत लोगों के विषय में कि शास्त्र से सुनता है, साधु से सुनता है कि मरने के बाद जमराज जी दुख देंगे, और दृष्ट देखता है सरकार दंड दे रही, जेल में बंद कर रही है, किसी को फांसी दे रही है, किसी को आजीवन कारावास दे रही है। लेकिन जानन अति, इस बात को जानते हुए भी करोति भूय विवश, वो अपने स्वभाव से प्रकृति से ऐसा बाध्य होता है कि जानते हुए भी पाप करता है। तो प्रायश्चित अथवा कथम, कभी भी प्रायश्चित में क्या कम, हम कुछ पाप किए और प्रायश्चित किए लेकिन पाप करने की आदत रह ही गई। इस प्रकार से थर्ड क्लास के प्रायश्चित से क्या मतलब है। सुखदेव गोस्वामी की बात को काट दिया उन्होंने, ये उपाय ठीक नहीं। आगे इसको भी क्लियर करते हैं, क्वचित निवर्तते भद्रात क्वचित चरति तत् पुनः प्रायश्चित्तम अतो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत्। क्वचित निवर्तते भद्रात, कभी कभी मनुष्य पाप से निवर्तित हो जाता है, नहीं करता है पाप, और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वही मनुष्य और वही पाप फिर करने लगता है। ऐसा होता है, कभी कभी ज्ञान होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा संस्कार है, कर्मों का फोर्स है पूर्व जन्म से, वो बेचारे न चाहते हुए पाप कर बैठता है। क्वचित चरती तत्पुनः चरती, उसी पाप को करता है। तो फिर तो मैं प्रायश्चित को हाथी स्नान के समान व्यर्थ मानता हूँ, और प्रायश्चितम अतो अपार्थम, मैं प्रायश्चित को व्यर्थ मानता हूँ। बहुत बड़ी बात महाराज परीक्षित कह रहे ऋषियों की सभा में, सुखदेव गोस्वामी जैसा महान विद्वान प्रायश्चित बता रहा है तो इसको ये कहते ही तो बेकार। ये तो कुंजर शौचवत, कुंजर का अर्थ है हाथी और शौच का अर्थ है सूचित स्नान, तो हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। हाथी स्नान करता है नदी में जाकर, अपने सूंड से पानी उठा उठा करके अपने पर डालता है, नदी में अवगाहन करता है, लेकिन वो अपने स्वभाव से बाध्य है। जब ही वो जमीन पर आता है सरोवर से या नदी से, तो धूल उठा उठा कर फिर आत्मान मलिनी करोती, अपने को मलिन कर लेता है। जैसे स्नान करने का उसका स्वभाव है, वैसे ही धूल उठा उठा कर डालने का स्वभाव, धूल डालता रहता है। शायद आप लोगों ने देखा होगा हाथी को, इधर तो धूल नहीं मिलती है, सड़क पक्का है इसलिए वो नहीं डाल सकता, लेकिन हम लोगों ने देखा है कई बार इसको धूल उठा उठा कर अपने देह पर इधर उधर छिड़कना है हाथी का स्वभाव। वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है पाप करना, ले जाकर के स्नान भी करा दिए गए हाथी को तो फिर धूल डालकर मलिन हो जाता है। ऐसे मनुष्य से कुछ प्रायश्चित करा दीजिए, ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, पाप भी जारी रहता है। तो इसको तो मैं अपार्थम मानिए, अपार्थम मतलब व्यर्थम मानिए, मैं इसको व्यर्थ मानता। और वास्तव में सुखदेव गोस्वामी परीक्षा ले रहे थे अपने शिष्य की, मैं यह बात कह देता हूं तो क्या परीक्षित संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन परीक्षित इतने बुद्धिमान थे वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कह दिया कि ये व्यर्थ है, प्रायश्चित व्यर्थ, कोई ऐसा उपाय बताइए कि उससे पाप हो ही नहीं। ऐसा पक्का औषधि बताइए, ऐसी दवा मत बताइए कि खाया कुछ दिन निरोग हुआ और फिर बीमार हो गए, ऐसी दवा हमें नहीं चाहिए। हाथी अपने सिर पर धूल डालता है तो इसके विषय में हम लोग पढ़े हैं, उक्तियां हैं हिंदी साहित्य में। एक बार तुलसीदास जी ने पूछा रहीम कवि से, भक्त रहीम से, तुलसीदास जी ने पूछा कि धूल धरत निज शिष्य पर कहू रहीम के काज,
हे रहीम जी ये बताइए कि गजराज धूल को अपने सिर पर क्यों धारण करता रहता है। तो रहीम जी बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने तत्काल उत्तर दिया कि जेहिवज मुनि पत्नी तरी तो धूलत गजराज। जिस भगवान श्रीराम के जिस चरण धूली से अहिल्या तर गई, उसी धूली को गजराज खोद खोद कर अपने सिर पर डालता रहता है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ये भक्त की भावना है। जहिवज मुनि पत्नी तरी, मुनि पत्नी मतलब गौतम की पत्नी अहिल्या जिस रज से तर गई, उसी रज को हाथी आज तक खोजता रहता। चलते चलते सब विचार करता, हो सकता है कि यहाँ वो रज हो, श्रीराम चरण रज हो तो मैं तर जाऊंगा। ये तो भक्त का भाव है, लेकिन ये स्वभाव है हाथी का, वो धूल डालता रहता। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है कि पाप करता ही रहेगा। पाप न कर पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए महाराज परीक्षित का जो खंडन है सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य का बहुत महत्व। पाप न कर पाना बड़ा कठिन है। महाराज परीक्षित का जो खंडन है सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य का बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं, कोई और उपाय बताइए। सब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बड़ी बात रावणी हुआ है, अब थोड़ा सुपीरियर बात बता रहे हैं। कर्मणा कर्म निर्हारो न जाते अविश्वत अधिकारी स्वास्थ्य प्रायश्चितम विमर्शन। अब सत्य बोल रहे कर्म महाराज, वास्तविक बात यह है कि कर्म से कर्म का आत्यंतिक नाश नहीं होता। पाप भी एक कर्म है और प्रायश्चित भी एक कर्म है, तो एक कर्म से दूसरे कर्म का आत्यंतिक नाश नहीं हो सकता। वैसे जैसे सूटे मल की मलही से धोए पाओ कोई बाघ जिलोए, रामचरित मानस में कहा गया है कि मल से मल को धोने पर उपास नहीं होगा, पानी को मथने से भी नहीं निकल सकता। तो जीव अज्ञान में पाप करता है, पाप का जो प्रायश्चित है वो भी अज्ञान में किया जाता है, वो भी कोई ज्ञान नहीं है। जीव को ये पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूपगत कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है, इसको नहीं जानता। प्रायश्चित में इस बात का उसे पता नहीं होता है। एक कर्म को दूसरे कर्म से वो नलिफाई करना चाहता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न ये आत्यंतिक चीज है, इसे आत्यंतिक नाश नहीं होता है। तो प्रश्न होगा कि तब शास्त्र में मनु महाराज का जीवन पराशर जीवन स्मृति कार प्रायश्चित में बताते हैं जो कर्म करने के लिए कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और विश्वत अधिकारी क्योंकि इसका अधिकारी अज्ञ होता है, अज्ञ व्यक्ति को जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, भगवान को नहीं जानता है, उसके लिए ये बातें बताई जाती है। इसकी योग्यता चलता है, चलो भाई यही करो। उस अधिकारी अनधिकारी को अज्ञ को अगर बताइए कि भगवान का नाम जप करो तो वो उसमें उसकी श्रद्धा नहीं होगी, और उसको बता दीजिए कि यहाँ से पैदल कुछ कुछ घूमो तीन दिन जाओ तो चलो। ऐसा हम लोग देखते हैं बॉम्बे में बहुत से लोग हैं, उनको कहा जाए कि एक मान लो जब करो तो नहीं कर, तो वृंदावन चलो घूमने के लिए कार्तिक में तो पहले ही रिजर्वेशन ले लेते हैं। उतना बड़ा काम कर सकते हैं लेकिन जब नहीं कर, ये दशा है ना। अनेक लोगों की ये दशा, इसलिए जो श्रद्धा नहीं करते हैं तो इसलिए तो बहुत हल्का साधन है, तो बहुत कौड़ा है, इससे क्या ये विचार। जो अब अधिकारी होते हैं उनके लिए बताया ठीक है, जब करो तीर्थ करो दान करो ये करो वो करो, यही बताया जाता है। क्या कह रहे वो बताया जाएगा तो उसको करे, इतना दान दो तुम कर जाओगे तो दान दे देंगे, कहा जाए कि मतलब सब किया करो। तो उसे बंधा नहीं। इसीलिए ऐसे भव्य अधिकारियों के लिए स्मृतिकारों ने भारी भारी कर्म बताया, ये करो ये करो ये करो ये करो। देव गोस्वामी पाप करते और विद्वत अधिकारी हुआ, और विद्वत अधिकारी हुआ मूर्ख लोगों के लिए प्रायश्चित की बात है। देव कहता है कि शुद्धि होती है लेकिन पूरी पूरी शुद्धि नहीं होती। हमारे परिचित पूछते हैं कि ठीक है तो वास्तविक प्रायश्चित क्या है, सही सही प्रायश्चित क्या है। देव गोस्वामी कहते हैं प्रायश्चितम विमर्शनम, विमर्शनम विचार करना तथा ज्ञान ही वास्तविक प्रायश्चित। बहुत सुंदर बात हुआ, विमर्शनम ही प्रायश्चित है। विमर्शन किसी चीज को ठीक ठीक जान लेना और जान करके व्यवहार करना ये प्रायश्चित। इसको भी उदाहरण के द्वारा नस्ल का पक्ष ने बाना या देव की खुवंश एवं नियम कृत राजन समय इस्तेमाल कर सके। जैसे यदि ये उदाहरण विकसित नहीं हो रहा है, यदि सुखदेव गोस्वामी को आगे उसको बता रहे हैं ज्ञान को ही प्रायश्चित करो, किसी चीज की सही सही जानकारी हो जाए तो प्रायश्चित। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जहर रखा हुआ है, जीत रखा हुआ है, और किसी व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो गया तो जीत है तो नहीं पिएगा। जानकारी हो गई कि ये पाप है नहीं करना चाहिए, ये पुण्य है करना चाहिए, तो ज्ञान जो है वही वास्तव में प्रायश्चित। इस बात से परिचित महाराज जी कहा कुछ ठीक है लेकिन पूरे पूरे ठीक नहीं। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं अस्मृत पक्षम एवं पक्षम अन्नम एवं अस्मृत, जो केवल स्वच्छ अन्न खाता है मतलब स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करता है, गड़बड़ नहीं खाता है, तो व्याध है अन्न अभिभवन, उसको व्याधियां नहीं दबा पाती, रोग नहीं होता है ठीक से खाए तो। लेकिन प्रश्न ये होता है कि ज्ञान बना नहीं रहता है सब समय, ज्ञान भी तो कभी कभी बनता है घट जाता है। किसी आदमी को मरा हुआ देख कर किसी के भी मन में ज्ञान हो जाता है लेकिन ज्ञान दिखता नहीं, तुरंत खत्म हो जाता है। शास्त्र सुनने पर कथा सुनने पर ज्ञान होता है दिखता नहीं। तो ऐसी बात बताइए जिससे ज्ञान हमेशा टीका है। इसके लिए अब सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे थे, पहले ज्ञान को उज्ज्वल रखने के लिए उपाय बताते हैं। हे राजन, अगर कोई नियम कृत नियम का पालन करता है शास्त्रों के अनुसार तो उसका ज्ञान बना रहता है, और ज्ञान बना रहता है तो आदमी पाप नहीं करता। जब ज्ञान खत्म हो जाता है तब व्यक्ति पाप करता है। अतः भगवान का ज्ञान, जीवात्मा का ज्ञान, अपने कर्म बंधन का ज्ञान, कर्म से मुक्ति का ज्ञान बना रहे हृदय में, इसके लिए बहुत बहुत उपाय है। लेकिन उपाय इतना कठिन है कि वो कोई करेगा नहीं। कठिन उपाय सब बता रहे हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च तमेन च त्यागेन सत्य शौचा ध्यान जमेन नियमेन च देहवा बुद्धि गंभीरा धर्मज्ञः श्रद्धयान्वितः सुतंतकं महदपि देवुर्गुल्मिवा नलः। सबसे पहला उपाय बता रहे हैं तपसा। भोगों से बुद्धि मलिन हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति तप करता है तब उसके हृदय में उसकी भावना मृत जगा रहता है, ज्ञान प्रज्वलित रहता है। तपस्या सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान को या भक्ति को जागृत रखने के लिए। तप का अर्थ होता है स्वधर्म का पालन, इंद्रियों को उनके विषयों से बचा कर रखना, जैसे आंख को सुंदर रूप से, कान को विविध शब्दों से, जिह्वा को विविध रसों से, स्पर्श इंद्रियों को विविध स्पर्शों से, और नासिका को विविध घ्राण से, गंध से, इस तरह से बचाना चाहिए। इसको तप कहते हैं। और ये तो निगेटिव साइड हुआ, और इनको उन विषयों से हटा करके भगवत विषय में रखना यह सबसे आवश्यक है। आंख भगवान के रूप में रहे, जीवा भगवत प्रसाद में रहे, कान भगवान के शब्दों में रहे, स्पर्श इंद्रिय उनका स्पर्श करे और नासिका से उनके चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी को सुंग है, दूध को सुंग है, इस प्रकार से ये सब उपाय है। लेकिन वास्तव में इस जगत में पक कर पाना बहुत कठिन है। इसके बाद बता रहे हैं ब्रह्म विद्या केंद्र पक से ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठिन। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जीव की रक्षा शरीर में, जो अद्भुत स्मृति शक्ति देता है शरीर में। जितने लोगों ने भगवान को वास्तव में समझा है उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। गदित संतो ब्रह्मचर्यम चरम थी भगवान ने गीता में कहा है। गृहस्थों के लिए भी ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, उनके लिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री संघ का विधान है, नहीं तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य सब जगह ब्रह्मचर्य की प्रशंसा है। सप्ताह ब्रह्मचर्य समेन का समेन का मन को कंट्रोल में रखना, मन को शांत रखना, तमेन का इंद्रियों पर निग्रह करना, त्यागे न त्याग का अर्थ है संन्यास या त्याग का अर्थ है दान। त्यागे न सब कुछ होता है, त्याग का अर्थ मुख्य अर्थ होता है दान, अपनी सुविधा को त्याग देना दूसरे के हित के लिए, उसको त्याग कर अथवा घर का त्याग करना, स्त्री का त्याग करना संन्यास। बहुत से लोग संसार की माया मोह को त्याग करके ज्ञान को स्थिर रखना चाहते हैं और सत्य पहुंचा ध्यान, सत्य का अर्थ वेदा ध्यान, शास्त्र का वाक्य सत्य है तो उसको पढ़ना सुनना और सोचा ध्यान सुखी रखना, जमीन का नियमेन का यम का पालन करना, नियम का पालन करना, 12 यम है 12 नियम है। यम का अर्थ है नहीं करना और नियम का अर्थ करना। जैसे शिल प्रभुपाद चार चीज बताते हैं, नो मिट्टी की नो गैंडी इत्यादि, ये यम है नहीं करना है और नियम है 16 माला जप करना, स्नान करना, मंगलारती करना, ये सब नियम। एक तरह से 12 यम है 12 नियम है। इन सब उपायों के द्वारा जो धीर पुरुष हैं, धर्मज्ञ हैं और श्रद्धा से युक्त हैं, शास्त्र में जिनकी श्रद्धा है और शास्त्र बताने वालों में जिनकी श्रद्धा है, वे लोग देहवाद बुद्धिजम देह वचन और बुद्धि से उत्पन्न हुए पापों को उसी तरह चिटक के जला देते हैं जैसे जीणु गुलमम अनल, जैसे आग बांस के गुरमुट को जलाकर राख कर दे। कितना भी बड़ा बांस का गुरमुट हो या ईंधन हो, छोटी सी आग भी उसको जलाकर राख कर सकती है। तो इससे तप से ब्रह्मचर्य से काम दम नियम पालन से त्याग से तप से बौद्ध से मनुष्य हृदय ऐसा ज्ञान प्रज्वलित होता है कि पहले की ऐसा शिक्षण भूषण दे रहे हैं कि उसको लगता है कि इससे पूरा पूरा हृदय शुद्ध नहीं हो पाता। जैसे देणु गुलम, देणु का अर्थ बांस और गुलम का अर्थ झुरमुट, बांस का झुरमुट देखा है, सब गांव में रहने से सिखाई पड़ता है बांस का झुरमुट क्या चीज है और कैसे आग लगती है और सारा बांस जल कर राख हो जाता है, हम लोगों ने देखा है दृश्यों। इसलिए भागवत गांव में रहने वाले आसानी से समझ सकते हैं। जितना उदाहरण आया है लगभग 80% से अधिक गांव का उदाहरण आया है, अगर बांस जलते ही कोई देखा ही नहीं तो इस उदाहरण को क्या समझेगा। तो बांस के झुरमुट में आग लगती है, प्राय गर्मी के दिन में लोग जान बुझ करके ही आग लगा देते, तो बांस जलकर राख हो। बड़े बड़े बांसों में आग नहीं लगाई जाती है, बांस का झुरमुट एक अलग चीज, बहुत छोटे छोटे उसमें कथाएं निकल जाती है, कुछ सूखा कुछ हरा, इस तरह से पत्ता रहता है, आग लगा देते हैं।